नमस्कार शिक्षार्थियों, हमेशा की तरह आज हम भूगोल भाग के मॉड्यूल 2 के पाठ 10 जलवायु पर चर्चा करेंगे। आप और हम दोनों ही कभी गर्मी महसूस करते हैं तो कभी सर्दी महसूस करते हैं, और कभी कभी तो हमें न गर्मी लगती है और न ही सर्दी। कभी हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु में घनघोर बारिश हो जाती है, और कभी देखते हैं बिन बादल बरसात हो जाती है। ये सभी जलवायु का ही तो प्रभाव है। तो अवश्य ही जलवायु का शब्द सुनकर ही हमारे जहन में आता है कि आखिर यह जलवायु क्या है? क्या जलवायु ही मौसम है, या मौसम ही जलवायु है, या इन दोनों में कोई अंतर है? भारत में क्या एक ही प्रकार की जलवायु पाई जाती है? क्या यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और इन जलवायु का हमारे स्वयं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष आनंद जी। डॉक्टर सुभाष, आज हमारे जो टॉपिक है वह है जलवायु। जलवायु विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप हमारे शिक्षार्थियों को बताएं कि आखिर जलवायु है क्या।
तरुण जी, जहाँ तक जलवायु का प्रश्न है तो जलवायु जो हिंदी भाषा का शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और वायु
जी,
जिसको इंग्लिश में हम क्लाइमेट बोलते हैं
जी।
तो जो जलवायु है ये बेसिकली हमारा किसी बहुत बड़े क्षेत्र का एक वर्ष की विभिन्न ऋतुओं की जो औसत की जो मौसमी दशाएं होती है उसे उस दशा को हम जलवायु बोलते हैं। अर्थात कोई बड़ा हमारे पास जो विस्तृत रूप से क्षेत्र है
जी,
और यानी कि उस क्षेत्र की जो दीर्घकालीन की जो मौसम की जो दशाएं हैं और उन दशाओं का जो औसत निकल कर आया है उसको हम जलवायु कहते हैं।
अभी आपने जिक्र किया दीर्घकालीन, क्या दीर्घकालीन 2 वर्ष को माने, 5 वर्ष को, 10 वर्ष को, आखिर कोई टाइम तो होगा?
जी जी जी, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, क्योंकि दीर्घकालीन का प्रश्न होता है कि सब ये रिलेटिव टर्म है, सापेक्ष के। आपके लिए भी 1 साल हो सकता है, मेरे लिए 50 वर्ष भी दीर्घकालीन हो सकते हैं
जी, जी, बिल्कुल।
लेकिन हमने जो इसके लिए समय रखा है न्यूनतम, वो हमने 30 से 35 वर्ष रखा है। 30 से 35 वर्ष से ऊपर का जो समय है उसका हम औसत एवरेज लेते हैं बेसिकली, और उन औसत दशाओं के आधार पर ही हम निर्धारित करते हैं किसी अमुक क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु वहां पर है, किसी की नहीं है। क्योंकि बेसिकली ये जलवायु स्थायी होती है, अस्थायी नहीं होती है। जब 30 वर्ष के अंतराल के बाद जब मौसम का जो उसकी औसत दशाएं हैं उसके आधार पर निर्धारित करते हैं कि इस क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु यहाँ पर मिलती है। तो जो आप पूछ रहे हैं समय की बात, तो जो समय इसमें है तरुण, वो 30 से 35 वर्ष का समय हम इसमें रखते हैं, जो हमारा न्यूनतम समय इसमें हम लेते हैं
जी। ये तो हुई जलवायु की बात। अक्सर सर हम आम बोलचाल की भाषा में मौसम बोलते हैं कि मौसम, आज का मौसम कितना है, आज का मौसम कैसा है। क्या मौसम और जलवायु क्या एक ही शब्द है, क्या इन दोनों में कोई अंतर है?
हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है तरुण जी। दोनों के अंदर देखो स्पष्ट रूप से अंतर है। वैसे तो आम बोलचाल में हम मौसम और जलवायु को एक प्रकार का पर्याय के रूप में उसका हम प्रयोग करते हैं, एज ए सिनोनिम यूज करते हैं। लेकिन अगर वास्तविक रूप से बिल्कुल एक यानी कि बारीकी दृष्टिकोण देखें, दोनों में स्पष्ट रूप से अंतर है। जो हमारा मौसम होता है वो किसी दिए गए विशेष समय पे विशेष क्षेत्र की जो उसकी मौसम की दशाएं उसको इंगित करता है। अर्थात कोई क्षेत्र हमारे पास है और वो क्षेत्र एक जो हमारे क्षेत्रफल में एक छोटा क्षेत्र हो सकता है, यानी कि उसके अपेक्षाकृत जो जलवायु था उसके मुकाबले छोटा क्षेत्र, और ये दिया गया समय कि कोई किस समय पर आप किस दशा को जानना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र की दशा पे उस समय पर क्या दशा वहां पर उपलब्ध है, वहां पर क्या उसका एग्जिस्टेंस है, उसके आधार पर हम बोलते हैं मौसम। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सपोज कोई भी उदाहरण हम कह सकते हैं कि आज का मौसम कैसा है। अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि आज का मौसम इस प्रकार का है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि आज की जलवायु ऐसी है
जी।
अर्थात इस दोनों में अंतर है। दोनों में मुख्यतः अंतर आता है 2 प्रकार का, एक तो समय का कि उसमें दीर्घकालीन समय आता है जलवायु में, तो
अल्पकालीन,
इसमें अल्पकालीन आता है, लघुकालीन आता है। दूसरा आता है समय क्षेत्र का, उसमें एक बहुत बड़ा क्षेत्र को हम शामिल करते हैं, इसमें हमारा छोटा क्षेत्र को इसमें हो सकता है। दूसरा उसमें जो हमारी जलवायु है वो स्थायी होती है, मौसम के भी स्थायी नहीं होता। हो सकता है कि सुबह का मौसम आपने देखा हो ठंडा हो, शाम को बदलते बदलते मौसम बदल गया हो, शाम को बारिश हो सकती है, दिन में बारिश हो सकती है, तापमान बहुत नीचे सुबह कम था रात शाम को बढ़ सकता है
जी।
या शाम का यानी कम है सुबह का बढ़ सकता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा यानी कि हर क्षण प्रति क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन मौसम में होता रहता है।
जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक आपने कहा कि मौसम है वो एक छोटा क्षेत्र है, तो हम दिल्ली की जलवायु के बारे में बात करें तो हम दिल्ली का ही उदाहरण लें कि दिल्ली का मौसम कैसा है, दिल्ली की जलवायु कैसी है, क्या दोनों में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा?
देखिए, जो जहाँ दिल्ली की बात है, दिल्ली के लिए जो उपयुक्त शब्द है वो मौसम हमारे लिए उपयुक्त ज्यादा शब्द है। क्लाइमेट हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि दिल्ली का जो क्षेत्रफल है वो 1483 स्क्वायर किलोमीटर का है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो नेचुरल या संभवतः उत्तर भारत के लिए सबसे जो सार्थक शब्द हमारे लिए होगा वो जलवायु होगा। तो छोटे से राज्य के लिए यदि आप जलवायु शब्द प्रयोग करेंगे तो सर्वथा सार्थक नहीं है, बिल्कुल यानी वो ठीक नहीं हो पाएगा।
अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो भारत देश की जलवायु
बिल्कुल बहुत सुंदर शब्दों में हम उसको परिभाषित कर सकते हैं, बड़े सुंदर शब्दों में उसका वर्णन कर सकते हैं। भारतवर्ष लें या भारतवर्ष का कोई भी एक भूखंड ले सकते हैं, अर्थात पश्चिमी भारत ले सकते हैं, उत्तर भारत ले सकते हैं, दक्षिणी भारत ले सकते हैं, प्रायद्वीपीय भारत ले सकते हैं, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया। उस क्षेत्र की परिभाषित जलवायु को बहुत अच्छे प्रकार सुंदर शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं उसको।
भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं?
जहां तक भारत की जलवायु की बात है तरुण जी, भारत की जलवायु क्या कारक प्रभावित करते हैं? सर्वप्रथम तो उसमें आता है उसकी स्थिति, द लोकेशन ऑफ द इंडिया, भारत की स्थिति कैसी है। दूसरा, उसके बाद उसमें जो दूसरा कारक जो यानी फैक्टर आता है वो होता है समुद्र से दूरी, कि भारत की जो स्थिति है क्या समुद्र के पास है या समुद्र से दूरी है या समुद्र में निकला हुआ कोई द्वीप है। तीसरा है इसमें जो कारक हमारा है वो है हमारा समुद्र तल से ऊंचाई, अर्थात यानी कि अल्टीट्यूड्स, यानी कितनी ऊंचाई है समुद्र तल से जिसकी आप बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आप भारतवर्ष की आप बात कर रहे हैं। चौथा है कि उत्तर भारत में जो स्थित हमारी पर्वत श्रेणियां हैं, जो आप जैसे भी जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध हमारे पास एक पर्वत श्रेणी जो कि हिमालय, हिमालय उसको प्रभावित करता है, तो एक हिमालय की जो उसका अस्तित्व है एक वो है। इसके बाद दूसरा आता है जो पवन है, जिनको आप बोलते हैं धरातलीय पवन, सरफेस विंड्स, और एक हमारा ऊपरी जो हमारी जो वायु धारा है जिन्हें अपर हम बोलते हैं अपर एयर करंट्स वो है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सी सरफेस विंड्स एंड अपर एयर करंट्स एंड हिमालयन माउंटेन्स रेंज।
आपने सबसे पहले बताया स्थिति के बारे में, स्थिति हमारी भारत की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती है?
जहां तक स्थिति की बात है देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है हमारे सामने प्रश्न कि भारत कहां स्थित है।
जी,
यदि हम ग्लोब पे देखें, विश्व मानचित्र पे देखें, तो सर्वप्रथम भारत की स्थिति बहुत सुंदर स्थिति है। शायद मेरे हिसाब से विश्व में कोई ऐसा देश हो जैसा कि जितना सुंदर मानचित्र भारत का बनता है ऐसे किसी का बनता हो।
बिल्कुल सही,
हम ये देखते हैं कि भारत जो है एक तो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
जी बिल्कुल,
और उत्तरी गोलार्ध में भी शुरू या अंतिम में स्थित नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में लगभग हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एक मध्यवर्ती स्थिति लिए हुए केंद्र में स्थित है, क्योंकि 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री के बीच इसका विस्तार है देशांतर रूप से, जबकि जो हमारा पूर्वी गोलार्ध है पूर्वी गोलार्ध हमारा 0 से 180 डिग्री है, तो 0 से 180 डिग्री के बीच में जो हमारा बेसिकली आएगा वो हमारा 68 डिग्री से 97 डिग्री देशांतर आएगा।
जी,
जब हम करते हैं अक्षांश दृष्टिकोण की बात, तो अक्षांश के दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो अक्षांश के दृष्टिकोण से उत्तरी में है और देशांतर के दृष्टिकोण से हमारा ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो रही बात अब इसकी लोकेशन की, जो आप बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन जो आप पूछना चाह रहे हैं, इसकी जो हमारी जो लोकेशन जो स्थिति है वो यह यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से इसका यानी दक्षिणी भाग इसका स्थित होता है, जहां से जो कन्याकुमारी के पास, और ऊपर जाके जो जम्मू एंड कश्मीर में यह हमारा 33 डिग्री 6 मिनट में समाप्त हो जाता है। यह इसकी मुख्य भूमि है।
क्या दक्षिणतम बिंदु को हम लोग कन्याकुमारी से अगर मापें या फिर हम इंदिरा पॉइंट लास्ट पॉइंट?
नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है।
जी,
अब क्योंकि हम भारत की जो मुख्य भूमि उसके अलावा हमारे यानी कि अरब सागर और दूसरा हमारा बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीप निकले हुए हैं जो कि पूर्णतः भारत के नियंत्रण में, भारत के अपने द्वीप है। जब हमारे नियंत्रण में है, भारत का शासन वहां पे चल रहा है, भारत की सरकार के वो केंद्र में, तो स्वाभाविक रूप से वो हमारे अपने हुए। जो अपने हुए तो अंडमान निकोबार का जो दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो हमारा अपना है, जो कि 6 डिग्री के आसपास स्थित है। तो वास्तव में देखे तो हमारा जो भारत का विस्तार है वो 6 डिग्री से आरंभ है, लेकिन क्योंकि हम मुख्य भूमि जब बात करते हैं, मुख्य भूमि की मेन हम मेन लैंड की बात करते तो हमारा 8 डिग्री से आरंभ हो जाता है। तो 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के बीच भारत की स्थिति है वहां पर। अब रही बात ये, जब 8 डिग्री है तो साफ स्पष्ट है कि ये 800 डिग्री है, ये विषुवत रेखा के पास है, और आप जैसे आप जानते हैं कि जो विषुवत रेखा पे जो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है, वर्टिकल सन रेडिएशन होता है। और जब वर्टिकल सन रेडिएशन होता है तो नेचुरली वहां पे गर्मी ज्यादा होती है, क्योंकि जब सीधी किरणें आती हैं तो वो यानी कि बहुत सीधी किरणें एक तिरछी किरणों की अपेक्षा ज्यादा यानी कि एरिया को कवर कर लेती हैं और यानी कि बहुत तेजी से पहुंच पाती हैं और अपने प्रभाव को दिखाती हैं और तापमान को बढ़ा देती हैं। तो यही कारण है कि हम हमारा विषुवत रेखा पर इक्वेटर लाइन पे उच्च तापमान पाए जाते हैं। तो हमारा विषुवत रेखा से जैसे हम भारत की तरफ जाएंगे तो भारत के दक्षिण जो भाग है, दक्षिण भारत के आसपास हमारे वहां पर उच्च तापमान पाया जाता है
जी।
और जैसे हम यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे धीरे 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 तापमान में हमारी कमी होती चली जाती है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि लगभग भारत को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा है, जो कि हमारा यानी कि 23.5 डिग्री पर है
जी।
अब इस 23.5 डिग्री के दक्षिण का जो भाग है वो हमारा उष्णकटिबंधीय भाग है, उच्च तापमान है, हाई टेम्परेचर है। ऊपर की तरफ जाते हैं धीरे धीरे टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है
जी।
तो ये बात बिल्कुल सर्वथा यानी कि हर जगह सत्य साबित हो चुकी है, क्योंकि भारत की स्थिति समूह आपकी विषुवत रेखा के नजदीक है और वो विषुवत रेखा प्रत्यक्ष रूप से भारत की जलवायु को प्रभावित कर रही है
जी। ये तो बात हुई स्थिति की। अगर हम दो स्थान को लें तो वो दो स्थान है एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित है, लेकिन वो ऊंचाई के साथ दोनों में भिन्नता है। क्या उन दोनों स्थानों की जलवायु सेम होगी या उन दोनों में डिफरेंस होगा?
बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा तरुण जी, क्योंकि हमारे सामने प्रश्न यही उपस्थित होता है कि जब स्थिति दोनों की सेम है तो क्या जलवायु अलग होगी या नहीं होगी
जी।
अब यहाँ पर जो आपने प्रश्न किया ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सपोज करिए हमारे पास कोई दो स्थान है और दोनों स्थान एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दोनों की जलवायु एक प्रकार की हो
जी।
क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि वहां पर हमारा एक कारक और आ जाता है, वो हमारा कारक है समुद्र तल से औसत ऊंचाई
जी।
यानी कि दोनों की जो स्थान आप बात कर रहे हैं उन दोनों स्थानों की समुद्र तल से एवरेज हाइट कितनी है। जिस प्रकार हम उदाहरण से कह सकते हैं एक शिमला हमने ले लिया
जी बिल्कुल,
और हमने जालंधर ले लिया या दूसरा हमने लुधियाना ले लिया। अगर हम देखें तो ये बेसिकली तीनों को तीनों जो सिटी है, तीनों जो हमारे शहर है, वो एक
अक्षांश रेखा पर स्थित है बिल्कुल सर।
लेकिन तीनों में से जो देखें इनमें दो प्रकार की जलवायु मिलती है
जी।
जो जलवायु हमें देखने को मिलती है शिमला में वो जलवायु हमारी जालंधर में नहीं है, लुधियाना में नहीं है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जबकि अक्षांश रेखा एक है, विषुवत रेखा से दूरी एक समान पर है, भारत देश एक है, फिर अंतर क्यों है जलवायु में? वो अंतर इसलिए है क्योंकि दोनों में ऊंचाइयों में अंतर है। जो हमारा शिमला शहर है हिमाचल प्रदेश का है, जैसे कि आप जानते हैं उसकी राजधानी है, वहां पे जो उसकी ऊंचाई है वो करीब 2200 मीटर है
जी।
जो कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। और यदि हम बात करें अपने दूसरे जो आप शहर आप बता रहे हैं लुधियाना की, उसकी जो बेसिकली जो हाइट है वो करीब 244 मीटर के आसपास है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मोटा मोटी मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि 200 मीटर की हाइट का डिफरेंस है
जी।
2000 मीटर की हाइट का डिफरेंस है। और जब 2000 मीटर की हाइट का जब ये अंतर है तो नेचुरली वहां पे तापमान कम होगा। तापमान पे क्यों कम होगा? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि बेसिकली जब हम नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं वायुमंडल में तो धीरे धीरे हमारा तापमान कम होता जाता है
जी।
जैसे कि हम ये माना गया है कि 165 मीटर ऊपर जाने पर एक डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है
जी बिल्कुल,
जिसको कि हम बोलते हैं तापमान की ह्रास दर अर्थात लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। तब इसका मतलब यह कि जितना आप ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर
कम
होता चला जाएगा। यही कारण है कि जब 2000 मीटर पे आप ऊपर जाएंगे तो नेचुरली वहां पे टेम्परेचर आपका बहुत अधिक कम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आपने सुंदर प्रश्न पूछा कि जब दोनों स्थान एक ही अक्षांश पर स्थित है तो जो जलवायु में क्या अंतर है या नहीं है? बिल्कुल अंतर होगा। केवल निर्धारण ये कारक करेगा कि वहां की औसत ऊंचाई दोनों की क्या है।
डॉक्टर आनंद, आपने बताया कि स्थिति उस समुद्र तल से ऊंचाई दोनों ही कारक हैं जो हमारी जलवायु को प्रभावित कर रहा है। आपने एक कारक का और जिक्र किया था, वह है सागरों की निकटता। क्या सागर की निकटता हमारी जलवायु को प्रभावित करती है?
बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही आपने पूछा। बिल्कुल सागरों की जो हमारी बेसिकली उपस्थिति है बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से भारत की जलवायु को प्रभावित कर रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत का जो दक्षिण भाग है वो तीन तरफ समुद्रों से घिरा हुआ है।
बिल्कुल सही,
यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत का 22 डिग्री अक्षांश से नीचे का जो हिस्सा है, जो पार्ट है, वो यानी कि नीचे समुद्र में चला गया है और ऊपर का जो हमारा हिस्सा है वो इस तल से घिरा हुआ है। ऊपर का हमारा लैंड लॉक्ड हो गया, नीचे का हमारा बेसिकली यानी कि सराउंडेड बाय ओशंस एंड सी हो गया। अब यह क्योंकि हम आप जानते हैं कि जो भी जल होता है वो देर से तो ठंडा होता है
और देर से ही गर्म होता है।
अगर दोनों में हम अंतर करें तो सतल और जल में
जी,
जब इसमें कोई दो राय नहीं है कि तल भी गर्म होता है ठंडा होता है, लेकिन उसके मुकाबले जल की हम बात करें तो
जी,
तो और उसके अलावा जो सबसे बड़ी जो इसमें यानी कि विशेषता है जल की, जो समुद्र की है, वो ये है कि यहाँ पे समुद्र के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पे तापक्रम जो है या ताप परिसर हमारा कम होता है, आर्द्रता अधिक होती है। जबकि ऊपर की तरफ हम सतल एरिया में जाएं वहाँ आर्द्रता हमारी कम और ताप परिसर हमारा अधिक होता है
जी।
तो यानी कहने का मतलब ये है कि वो स्थान जिनको कि लाभ मिल रहा है सागरों की उपस्थिति का, वहां पर जो जलवायु मिलेगी वो मिलेगी एक प्रकार की सम जलवायु, यानी कि वहां के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होगा।
क्या यही कारण है कि हमारे दिल्ली में गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और सर्दी में बहुत अधिक सर्दी, और इसके विपरीत मुंबई की बात करें तो मुंबई में सम जलवायु पाई जाती है, ना तो वहाँ अधिक गर्मी होती है ना ही सर्दी। क्या यही कारण है जो कि सागरों से निकटता है?
बिल्कुल सही आप पूछ रहे हैं तरुण जी, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, यही कारण है क्योंकि सागर के आसपास जो क्षेत्र स्थित है वहां पर सम जलवायु है, इक्वेबल हमारी क्लाइमेट है। जबकि ठीक इसके ऊपर जो हमारा हम जाएं भारत के आंतरिक भागों में, वह हमारी विषम प्रकार की जलवायु है, यानी कि समुद्र का जो प्रभाव है वहां सबसे अधिक वहां पर है जो भारत के तटीय क्षेत्रों पर है। उससे ऊपर जाएं तो उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। जहां तक आपने बात करी थी मुंबई और दिल्ली की, स्वाभाविक रूप से सभी को पता है जो महाराष्ट्र की जो राजधानी मुंबई है वो कहाँ पर स्थित है, वो समुद्र के पास स्थित है। जब समुद्र के पास स्थित है तो समुद्र की उपस्थिति का लाभ उस शहर को मिल रहा है,
तो इसलिए वहाँ पर सम जलवायु,
इसीलिए वहाँ पे सम जलवायु है, लेकिन वो लाभ दिल्ली को नहीं मिल रहा। या हम कह सकते हैं कि जैसे कि भारत के दो बड़े शहर और हैं, दक्षिण भारत में आप जाएं तो वहाँ पर आपका है चेन्नई, पूर्व में आप जाएं तो कोलकाता। इन तीनों मेट्रोपॉलिटन तीन महानगरों को जो हमारे ये सागर महासागर है, दक्षिण की तरफ हमारा हिंद महासागर है, पूर्व की तरफ हमारा हो गया बंगाल खाड़ी, पश्चिम की तरफ हमारा हो गया अरब सागर, इन तीनों सागरों का लाभ उनको मिल रहा है। उसी की वजह से भारत के तटीय क्षेत्र पर जो पाए जाने वाली जलवायु वो की सम जलवायु है, और जैसे ही जलवायु से हटकर हम अंदर की तरफ जाएंगे भारत के आंतरिक प्रदेशों में तो यह जलवायु हमारी सम न होकर विषम हो जाती है। अर्थात वहां पर जो टेम्परेचर होता है, तापमान जो होता है, उसमें अंतर अधिक बढ़ता चला जाता है, जबकि इन तटीय प्रदेशों में जो अंतर है वो अंतर हमारा कम होता है।
जी सर, अभी तक हमने जाना कि हमारी जलवायु कैसी है, जलवायु और मौसम में क्या फर्क है यानी क्या अंतर है, और हमारी जो भारत की जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर पर्वतीय श्रेणियां। उत्तर पर्वतीय श्रेणियां जो हैं वो हमारी भारत की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं? डॉक्टर आनंद, हम आपने अभी जिक्र किया था उत्तरी भारत श्रेणियों के बारे में, क्या उत्तरी पर्वत श्रेणियां भी हमारी जलवायु को प्रभावित कर रही हैं?
बिल्कुल तरुण जी,
कैसे?
इससे पहले कि मैं पर्वत श्रेणी के बारे में बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपसे पहले जो आपने मुझे प्रश्न पूछा था कि जो भारत की जो स्थिति है
जी,
और यानी कि भारत की स्थिति को किस प्रकार समुद्र उसको प्रभावित कर रहा है, तो आपने दो उदाहरण लिए थे जिसमें कि एक तो शहर लिया था आपने अपना दिल्ली शहर, एक लिया था आपने मुंबई शहर
जी।
इसमें एक बात मैं आपको और दूं, इसी प्रकार एक एग्जांपल और हमारे सामने बड़ा ही सुंदर एग्जांपल है। यदि हम बात करें मुंबई और नागपुर की, दोनों शहर हैं
जी,
दोनों एक ही राज्य में स्थित हैं,
बिल्कुल सर,
और दोनों की हम कह सकते हैं कि ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन एक शहर ज्यादा नजदीक है समुद्र से, एक शहर
दूर
है, यानी कि हम कह सकते हैं भारत के बिल्कुल आंतरिक भागों में, तो इसलिए दोनों की जलवायु अलग अलग है। नागपुर की जलवायु वो जलवायु नहीं जैसे कि मुंबई के, मुंबई में ज्यादा यानी कि सम जलवायु है, वहां की विषम जलवायु है, तो उसका बिल्कुल वो ठीक है। दूसरा प्रश्न जो आपने तरुण जी अभी पूछा कि किस प्रकार यानी कि पर्वत श्रेणी भारत की जलवायु को प्रभावित कर रही है
जी।
अब पहले प्रश्न तो याद है कि हम किस पर्वत श्रेणी की बात करें, पर्वत श्रेणी अर्थात कोई भी ऐसा यानी कि पहाड़ी क्षेत्र जो ऊंचा उठा हुआ हो, या कोई भी ऐसा पर्वत
जी
जो ऊंचा उठा हो और समुद्र से आने वाली पवनों के सामने एक बातक बनकर खड़ा हो गया हो, अवरोध बनकर खड़ा हो गया हो और उनको जाने आगे ना जाना देता हो, उनको वहीं परिवर्षण करने के लिए मजबूर कर दे
जी,
तो जैसा वो उसका हम कह सकते हैं कि जैसे कि जब समुद्र से आने वाली जो पवनें होती हैं
जी
अपने साथ वो नमी लिए होती है, आर्द्रता लिए होती है, और ये आर्द्रता युक्त पवनें जब धीरे धीरे आगे पड़ती हैं तो सर्वप्रथम तो उनके भारत के पश्चिमी घाट पर इन्हें पश्चिमी घाट का क्षेत्र मिलता है
जी, बिल्कुल।
जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो हमारे पास पर्वत क्षेत्र वो हिमालय क्षेत्र है
जी।
जब वो हिमालय क्षेत्र में जाती हैं तो हिमालय क्षेत्र से धीरे धीरे वो ऊपर उठनी शुरू हो जाती हैं और जब ऊपर उठती हैं तो तापमान कम होता है और उठते हुए तापमान की वजह से वो वहीं पर ही वर्षा करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। अर्थात अगर उनको वो अवरोध ना मिले
जी,
वो उनके लिए बाधक ना मिले तो शायद हो सकता है कि ये पवने सीधे चली जाएं और वहां की जगह वर्षा कहीं और करें।
जी।
तो भारत में जो वर्षा हमारी हो रही है उस वर्षा को लाने में रोकने में जो सबसे बड़ी बहन हमारी हम कह सकते हैं बहुत महान भूमिका है वो हमारे हिमालय पर्वत श्रेणी की है। अगर आज ये हिमालय पर्वत श्रेणी हमारे पास ना होती तो हो सकता है कि भारत की जलवायु जो आज मानसूनी है ताजी जलवायु ना होती, इतनी वर्षा हमें प्राप्त ना होती। क्योंकि जैसे ही ये पवने आ रही हैं इन पवने को रोकने का उत्तर भारत की जो पर्वत श्रेणी है वो कर रही है, और उनको वहां वर्षा करने के लिए मजबूर कर रही है। तो इसी प्रकार जो हमारी यानी कि हिमालय पर्वत श्रेणी है उनकी वजह से समुद्र से आने वाली पवनों को रोककर वर्षा होने के लिए वो उनको मजबूर कर देती है और वर्षा हमारी होती है। लेकिन यह वर्षा तब होती है जब वो सामने का क्षेत्र है। अगर ठीक उसके पीछे का क्षेत्र हम लेंगे जिसको हम पवनाभिमुख बोलते हैं
जी, जी।
या रेन शैडो एरिया बोलते हैं या वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, उसमें वर्षा नहीं होती क्योंकि पहले ये पवने जो है वर्षा इधर कर चुकी होती है। अब वर्षा करके जब उधर की तरफ जाती है तब इनमें नमी नहीं रहती क्योंकि पहले वो नमी गिरा चुकी होती है। तो एक तरफ तो यानी कि हम कह सकते हैं कि पहाड़ी या पर्वतीय श्रेणी में वर्षा बहुत अधिक होती है
जी,
एक तरफ कम होती है, जिसका उदाहरण हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट यानी ठीक जब उनके सामने पड़ता है पवनों के सामने वहां वर्षा अधिक होती है
और उसके विपरीत जहां पर हमारी जो पवने हैं वहां नहीं टकरा पाती,
नहीं टकरा पाती जैसे कि भारत में है। भारत का जो यानी कि उसके उधर का क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र वहां पर बहुत कम स्केंटी रेनफॉल होती है, बहुत यानी अभाव मात्रा में वर्षा होती है। ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं अपने भारत का जब हिमालय पर्वत श्रेणी के उधर का जो क्षेत्र है वो तिब्बती क्षेत्र है, उस तिब्बत क्षेत्र को आप देख लीजिए जितनी वर्षा हमारे पास है उतनी वर्षा वहां नहीं हो पाती।
अभी अभी आपने जिक्र किया था कि हमारी पर्वत श्रेणियां हैं वहां पर हमारी जो पवने हैं टकराती हैं और बारिश हो जाती है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी है वहां पर बारिश क्यों नहीं होती, राजस्थान में सूखा क्यों होता है?
बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि जब पर्वत श्रेणी की हमें बात कर रहा हूं और जब मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि वो पर्वत श्रेणी मजबूर करते हैं वर्षा करने के लिए तो ऐसी क्या बात है जो राजस्थान आज हार मरुस्थल से घिरा हुआ है जबकि पर्वत श्रेणी उसके पास है। जहां तक पर्वत श्रेणी की बात है जैसा कि आप जानते हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी वहां पर है
जी।
उसमें सबसे बड़ा जो कारण उसका है तरुण जी वो कारण यह है कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसकी जो स्थिति है वो ठीक यानी कि पवनों के समानांतर है, यानी जैसी पवने चलती हैं ठीक उसी के समानांतर पवने चलती हैं और ठीक समानांतर में उसी पर्वत श्रेणी की फैली हुई है जो कि उसको रोकने के लिए बाध्य नहीं करती, उन पवनों को नहीं रोक पाती। जब पवने नहीं रोक पाती पवने ठीक उसके साइड से निकल जाती हैं, उसके पास से गुजर जाती हैं तो वर्षण नहीं करती, वर्षा नहीं होती। यदि यही इनकी लोकेशन आज वैसी होती ठीक हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री के एंगल पे ये समकोण पे होती तो स्वाभाविक रूप से शायद होता कि आज थार मरुस्थल हमारे पास इतिहास में भी ना होता ना आज हमारे पास यहाँ होता।
जी 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 हम बात कर रहे हैं धरातलीय पवनों की, क्या धरातलीय पवने और जलवायु में कोई संबंध है?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि धरातलीय पवने और जलवायु में बहुत अंतर है। जैसे कि हम कह सकते हैं जो पवने हमारे पास आ रहे हैं
जी जी
वो पवन मानसूनी पवने हैं। अब जो मानसूनी पवने की हम बात करेंगे भारत की जो जलवायु वो मानसून से प्रभावित होती है
जी।
अब ये मानसूनी पवने कौन सी पर्सन पहले ये उठता है, लेकिन पहले जब आपने धरातलीय पवने पूछी इस धरातलीय पवने में हमारे यानी कि मानसूनी पवने भी आती है, समुद्री पवने भी वगैरह भी आती है, धरातलीय पवने भी स्थानीय पवने भी आती है। यानी कि पवनों का मतलब ये है कि जब वहां से जब वायु चलती है और वो समुद्र के ऊपर से या समुद्र के साथ से आती है तो वहां से नमी ग्रहण कर लेती है। नमी ग्रहण करके जब वो आगे बढ़ती है तो उसके अंदर यानी कि हम कह सकते हैं नमी होती है
जी।
तो जब वो नमी को कहाँ गिराती है वो निर्भर करता है यानी कि उसकी भू आकृति की स्थिति पर
जी।
जिस जो क्षेत्र उसके सामने पड़ रहा है तो यह जो पवने आ रही हैं अपने साथ ही नमी लिए होती हैं और ये जब नमी लिए होती है तो वहां पर वर्षा करती हैं। लेकिन प्रश्न ये आता कि क्या हमेशा ये जो पवने होती क्या समुद्र की तरफ समुद्र से स्थल की तरफ चलती है? ऐसा नहीं है क्योंकि जो पवने जो है वो 6 महीने चलते हैं हमारे
समुद्र से स्थल की हो, 6 महीने समुद्र से स्थल की और 6 महीने स्थल से समुद्र।
हाँ अब प्रश्न उठता कि ऐसे क्यों चलती है, ऐसा क्यों नहीं है स्थल से स्थल की ओर या सागर से सागर की ओर? उसका जो मुख्यतः उसका जो यानी कि हम कह सकते कारण है वो है इनमें द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर, यानी कि वायु दाबमान में अंतर होना। क्योंकि जो पवने चलती है ये हमेशा चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ
जी।
तो जब गर्मी के अंदर जब पवने चलती है तो निम्न दाब बना होता है स्थल मार्ग पे
जी,
स्थलों पे बना होता है और उच्च दाब होता है सागर पे। तो तो सागर से पवने उठती हैं और उठती जब आगे बढ़ती हैं स्थल की तरफ, तो रास्ते में जो भी उनको जलाशय मिलता है, जो भी यानी सागर महासागर या झील मिलती है, वहां से वो नमी ग्रहण कर लेती है और आगे बढ़ जाती है। जबकि ठीक इसके विपरीत
जी
हम कह सकते हैं कि अपना यानी कि विंटर के अंदर अर्थात सर्दियों में जब पवने जो होती है वो चलती है हमारी स्थल से
समुद्र
की ओर, क्योंकि उस वक्त जो हमारा हाई प्रेशर बना होता है वो हमारा बन जाता है
स्थल की ओर
बनता है, और जो लो प्रेशर बनता है वो बनता है हमारा
समुद्र पे
बनता है। लेकिन यह जो पवने होती है ये शुष्क पवने होती है और ठंडी पवने होती हैं
जी।
तो क्योंकि जब स्थल से आती है तो उन स्थल में तो उनको तो किसी प्रकार जलाशय मिलता नहीं इतना बड़ा जितना बड़ा जलाशय सागरों महासागरों में, इसलिए वो शुष्क पवने होती है और सागर की तरफ आती है। तो स्वाभाविक रूप से भारत की स्थिति को हम कह सकते हैं कि पवनों की दिशा भी पूर्णतः प्रभावित कर रही हैं।
जी, धरातलीय पवनों के अतिरिक्त क्या वायु धाराएं भी जलवायु को प्रभावित करती हैं?
बिल्कुल सही आप कह रहे हैं तरुण जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि जो धरातलीय पवन है उसके अलावा अतिरिक्त भी कुछ शक्तिशाली वायु धाराएं होती हैं
जी
जो उसको प्रभावित करती हैं। और ये शक्तिशाली वायु धाराएं इनको हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और ये जो जेट स्ट्रीम है ये समुद्र तल से 8 किलोमीटर से ऊपर पाई जाती हैं।
जी जी,
वैसे तो कह सकते हैं कि 8 से 10 हजार के बीच में इनका यानी कि रेंज माना गया है
जी।
इसके यानी कि ऊपर ही या इसके बीच 8 से 10 के बीच में ही वायुमंडल में ये परिसंचरण करती हैं, प्रवाह करती हैं। और ये एक संकरी पेटी है जहां पर बहुत तेजी से चलने वाली शक्तिशाली जो कि पवने हमारी हैं ये पवने। और ये जो जेट वायु धारा है, अब ये जो जेट वायु धारा ये कि भूमध्य सागर में जो उठने वाले हमारे पश्चिमी विक्षोभ है
जी,
जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं, उनको भारतीय की उपमहाद्वीप में लाने के लिए बाध्य करती है। अर्थात जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं उनको लाने के लिए जो मुख्य जो भूमिका है वो इन जेट स्ट्रीम की है, शक्तिशाली वायु धारा की है
जी।
अब प्रश्न ये उठता है कि अल्टीमेटली प्रश्न ये उठता है कि अब जो हम जो जेट स्ट्रीम है ये जो लेकर आ रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज को, इनकी क्या भूमिका है? अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं ये भूमध्य सागरी से उठते हैं
जी,
उठ के धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो फारस की खाड़ी मिलती है, पर्शियन गल्फ मिलती है
जी।
उस पर्शियन गल्फ से फारस की खाड़ी से ये नमी ग्रहण कर लेती हैं और नमी ग्रहण करके फिर ये पड़ती हैं उत्तर भारत की तरफ, जहां पर कि सर्दी में हमारे यहाँ वर्षा होती है, हल्की फुल्की वर्षा। और आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे यहाँ सर्दी में थोड़ी बहुत वर्षा होती है, जिसको हम कहते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आते हैं, जो कि हमारी गेहूं खेती के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है। अब क्योंकि सर्दियों में वर्षा यहाँ होती है, गर्मियों में यह जो पेटी है यह जो वायुधारा ये उत्तर की तरफ खिसक जाती हैं। और तो सर्दियों में जब हमारे यहाँ वर्षा होती है तो कई बार ये भी देखने को मिलता है कि हिमपात भी होता है
जी,
जो कि मुख्यतः यानी पर्वत श्रेणी में या हिमालय पर्वत के आसपास या उनकी तली में होता है। तो इन जो पश्चिमी जो विक्षोभ हैं जो ये जेट स्ट्रीम में बहुत बड़ी भूमिका निर्धारित करते हैं, अपनी भूमिका अदा करते हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो मानसून पवन है उनको लाने में और ले जाने में और उसको प्रभावित करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है
जी। सर, सभी शिक्षार्थियों ने जाना कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हमारी जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। सर, अक्सर हम सुनते हैं कि हमारी भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, अगर हम बात करें मानसून की तो ये मानसून क्या है?
जहाँ तक मानसून शब्द की बात है, ये मानसून हिंदी का शब्द नहीं है
जी,
वैसे तो हम हिंदी भाषा में इसका प्रयोग कर रहे हैं। मानसून जो है ये जो हमारा इसका हमने जो निर्माण किया है ये अरबी भाषा से हमने लिया गया एक शब्द है जो कि मौसम है
जी,
जिसका अर्थ है अर्थात कि हम कह सकते हैं कि मौसम
जी
यानी कि ऋतुवर्त परिवर्तन होना, यानी कि पवनों का ऋतु के अनुसार पलट जाना। क्योंकि अरब सागर में जो पवनें होती हैं उनमें परिवर्तन होता है, तो उसी के अनुसार ही उन्होंने इसको यानी कि मौसम का मौसम शब्द रखा और मौसम से हमने मानसून शब्द इसका बनाया लिया है। मौसम तो मानसून शब्द का अर्थ है कि वो पवने हैं जो कि जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास जो पवने आ रही हैं उनका जो प्रकृति है वो 6 महीने चलती है स्थल से सागरों की ओर, 6 महीने चलती है सागर से स्थल की ओर, तो ऋतु के अनुसार इनमें परिवर्तन हो जाता है। अब प्रश्न जो उठ जाती है कि परिवर्तन क्यों हो रहा है, तो जैसे कि वो मैंने आपको बताया कि परिवर्तन ये हो रहा है तापमान की वजह से, कि जहां पर तापमान अधिक है वहाँ का वायुदाब उससे प्रभावित होता है
जी। क्योंकि मुझे लगता है कि तापमान और वायुदाब में दोनों में विपरीत संबंध है।
बिल्कुल सही आपने बताया, बिल्कुल विपरीत इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों में।
बिल्कुल,
तापमान अधिक है तो हमारा वायुदाब कम होगा, तापमान यदि हमारा कम है तो वायुदाब हमारा ज्यादा होगा
जी। बिल्कुल,
तो ये बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं। तो जो मानसूनी पवने हैं, मानसूनी पवनों का अर्थात मतलब ये है कि वो 6 महीने है तो नहीं, लेकिन जब यानी तापमान हमारा बहुत अधिक होता है
जी,
और जिसकी वजह से हमारा लो प्रेशर बन जाता है उत्तर भारत के पश्चिमी क्षेत्र की तरफ हम कह सकते हैं, तो वो उत्तर भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र में जो लो प्रेशर है वो आकर्षित करता है हमारा हिंद महासागर में जो हमारा HP बना हुआ है, हाई प्रेशर बना हुआ है
जी,
उस हाई प्रेशर की जो पवनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वो इतना स्ट्रांग और इतना वो जबरदस्त बना होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि वो पवने इस उस दाब की तरफ खींच चली आती हैं, और जब खींच के चली आती हैं तो रास्ते में जो उसको हिंद महासागर मिल रहा है या दोनों तरफ यानी अरब सागर मिला और बंगाल की खाड़ी मिला, तो वहां से वो पवने क्या अपने साथ वायु को धारण वायु में यानी नमी को धारण कर लेती हैं और वो आर्द्रता युक्त हो जाती हैं
जी। तो ये तो बात हुई भारत की मानसून की, भारत की मानसून की क्या क्या विशेषताएं हैं?
भारत की जो मानसून है, अब पहली बात तो ये कि जो आपने पूछा कि भारत का मानसून जो आपने पूछा बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भारत की मानसून रचना तंत्र में है क्या
जी।
जैसे कि परंपरागत रूप से तो हम तो ये मानते गए हैं कि तापमान और हमने वायुदाब को हमने ज्यादा महत्व दिया है कि उसकी वजह से हमारा इसका फॉर्मेशन हो रहा है, मैकेनिज्म हो रहा है
जी।
लेकिन क्योंकि रिसर्च और शोध इस पे अभी भी चल रहे हैं, कोई भी साइंटिफिकली अप्रूव अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है कि एक ही मत को तवज्जो दी जाए। उसके बाद अनेक मत आए, फलोन का भी मत आया, अभी और स्टडी चल रही है, फलोन ने यानी कि ITCZ को उन्होंने ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया था, बाद में और भी अधिक सिद्धांत और थ्योरी आ रही हैं जो इसको बता रही हैं कि किस प्रकार मानसून की रचना होती है, कैसे मानसून बढ़ता है, कि इसको बढ़ाने में कौन कौन से यानी कारक ज्यादा जिम्मेवार हैं और क्यों मानसून प्रभावित तो होता है,
जी,
है? तो जब भी जैसे कि अभी आपने तरुण जी आपने प्रश्न पूछा कि जब ये मानसून चलो ठीक है रचना तंत्र जैसे हुआ ठीक है, हमारे पास अभी तक कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं है कि जो एक ही मत माने, क्या ही मत मानने को मजबूर है। अब जहां तक इसकी विशेषता की बात है तो इसकी विशेषता कई है। सबसे पहले तो ये अस्थायी पवन है, ये स्थायी नहीं है बिल्कुल भी
जी।
दूसरा, जब ये पवने हैं ये सागर से आती हैं और सतल की तरफ आगे बढ़ती
जाती
हैं, तो इनमें यानी कि मॉइस्चर होता है
जी बिल्कुल।
जब मॉइस्चर होता है तब ये सबसे पहले हिट करती है, हम अगर हम पूरा संपूर्ण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे
जी।
जो कि हम कह सकते हैं कि मई का अंतिम सप्ताह होता है वहां
जी।
पर। लेकिन जब जो भारत की जो मुख्य भूमि है तो वहां पे सबसे पहले 1 जून को पहुंचती हैं और ये पहुंचती है केरल पे
जी बिल्कुल।
तो जब एक जून को वहां पहुंचते हैं तो धीरे धीरे ये इनका जो है बेसिकली स्प्रेड हो जाता है और सारे में फैल जाती है और 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत को अपने आगोश में ले लेती हैं ये। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पे सामान्यतः जो हमने डेट फिक्स करी वो 29 जून के आसपास करी है कि 29 जून को मानसून पहुंचता है, लेकिन क्योंकि यह जो हमारा मानसून है कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा टाइम पे आया हो
जी, इसलिए कह सकते हैं इसकी विशेषता अनिश्चितता,
अनिश्चित है, कभी ये समय से पहले कभी समय से बाद में।
जो आजकल हमारे दिल्ली में बारिश हो रही है क्या ये एक मानसून की वजह से ही है?
जो अभी हमारा जो अब क्योंकि जो हमारा जो समय चल रहा है ये मानसून का समय हमारा चल रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि 29 जून से पहले भारत में मानसून आ गई थी, जिसको लोग कह रहे हैं कि ये हमारा यानी कि मानसून से पहले की वर्षा है, प्री मानसून सरोवर
जी,
है
जी,
तो ये वही था, तो ये हमारा मानसून पीरियड चल रहा है। लेकिन अभी दिल्ली में अगर बात करें तो एक प्रकार का अभी बीच में बारिश नहीं हो पा रही है, जिसको हम बोलते हैं कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि बीच में कुछ में सूखे के दौर आते हैं, जैसा दौर दिल्ली में अब आ रहा है, जैसे मान लो हुआ तो कई बार वर्षा लगातार हो रही, कई दिन तक नहीं हुई तो कई दिन तक वर्षा बिल्कुल नहीं हुई, या अगर रिमझिम वर्षा भी हो रही है या बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, तो कहीं कोई किसी प्रकार का इसमें ऐसी कोई वो नहीं है कि पक्का एक पॉइंट हो कि वर्षा इतनी मात्रा में होगी या कम होगी या ज्यादा होगी, कभी ज्यादा है कभी कम है, कभी समय से पहले है कभी समय से बाद में है। इतना जरूर है कि जब ये भारतीय मानसून जब भारतीय भूमि में प्रवेश करता है
जी,
तो क्योंकि भारत का जो नीचे का जो हिस्सा है वो प्रायद्वीप प्रकार का है, पेनिनसुलर प्लेटो है, वो भारत इस मानसून की पवनों को दो भागों में बांट देता है, दो शाखाओं में बांट देता है, एक शाखा निकल जाती है यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ और एक शाखा निकल जाती है हमारी अरब सागर की तरफ
जी बिल्कुल।
तो जो अरब सागर की जो मानसून की शाखा है हमारी वो वर्षा करती है हमारे इस पश्चिमी घाट पे और ऊपर की तरफ, जबकि जो हमारी दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी वो वर्षा धीरे धीरे ऊपर चली जाती है उड़ीसा पश्चिम बंगाल होते हुए भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में, और उसके बाद वो फिर यानी कि मुड़ के चली जाती है, हम कह सकते हैं कि भारत का जो शिवालिक क्षेत्र है उसके जो मैदानी क्षेत्र है उसमें यानी कि बिहार उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब दिल्ली होते हुए आगे निकल जाती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि सर्वाधिक जो वर्षा है इनमें उन दोनों में से ये शाखा अधिक कर दी है बंगाल की खाड़ी
जी,
क्योंकि ये ऊपर चली जाती है उत्तर पूर्व में और वहां जाके ये वर्षा कर देती है। लेकिन एक तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि एक तो इसमें किसी प्रकार को स्थायी नहीं है, समय से पहले समय के बाद भी आता है
जी,
दूसरे बीच में सूखे के दौर भी आते हैं, कई बार तो ऐसा भी होता है कि बिल्कुल वर्षा नहीं होती किसी क्षेत्र में, और कई बार ऐसा होता है कि वर्षा इतनी अधिक होती है कि बाढ़ का सामना करना पड़ता है।
जी बिल्कुल।
तो यानी कि बिल्कुल हम कह सकते हैं कि स्कैंटी ऑफ द वाटर एंड सरप्लस ऑफ वाटर बोथ आर हाईली डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग, दोनों मानव के लिए हानिकारक है। पानी ज्यादा है तो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और पानी ना मिले तो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो बिल्कुल इस मानसून की बहुत विशेषताएं।
तो मैं अभी अभी आपने कहा कि हमारे मानसून पवनों की दो शाखाएं हैं, एक बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होती हैं तो एक अरब सागर से। तो क्या जो हमारे भारत में सर्वाधिक बारिश होती है वह है मौसिनराम, क्या मौसिनराम में कौन सी मानसून की शाखा बारिश करती है?
बिल्कुल आपने सही प्रश्न आपने पूछा कि जब सर्वाधिक वर्षा होती है तो कौन सी शाखा से होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पहुंचने वाली जो शाखा है वो हमारी बंगाल की खाड़ी है
जी।
बंगाल की खाड़ी धीरे धीरे जो यानी पवने वो ऊपर पहुंचती हैं, और ऊपर जब पहुंचती हैं मेघालय के पठार के आसपास तो कुछ पहाड़ियां उनको मिलती हैं, जिसमें एक तो हमारी गारो खासी की पहाड़ियां और जयंती की पहाड़ियां। अब क्योंकि इन पहाड़ियों की जो बेसिकली जो प्रकृति है, जो स्थिति है, वो इस प्रकार की है कि इनकी जो आकृति कीप आकार है, कोनिकल शेप में है, और इन आकृतियों के बीच में मानसून पवने फंस जाती हैं। और जब मानसून पवने उनमें फंस जाती हैं, जब धीरे धीरे ऊपर उठते तापमान कम होता है, तो वहां पर वो उनको जो पहाड़ियां हैं उनको रोक कर उनको बरसने के लिए मजबूर कर देती हैं, और इतनी भयंकर वो बारिश करती हैं कि विश्व की सर्वाधिक जो वर्षा है वो हमारी मौसिनराम में होती है। जहां तक स्थाय की बात है, वैसे अधिकांश जो सर्वाधिक वर्षा वो चेरापूंजी शहर में होती है, चेरापूंजी के अंदर तो चेरापूंजी टाउन है वहाँ पे
जी जी।
लेकिन क्योंकि एक दो साल बीच में ऐसे ऐसे भी आए जहाँ सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी से ना उठ के उससे 10 किलोमीटर दूर जो स्थित ये स्थान है मौसिनराम, यहाँ पर भी हुई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मौसिनराम और चेरापूंजी जो कि भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, वहाँ जो सर्वाधिक जो वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से इनको प्राप्त हो रही है।
क्या मौसिनराम में हुई बारिश में अरब से उठने वाले मानसून का कोई योगदान नहीं है?
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल योगदान है, क्योंकि देखा जाए तो विशेष रूप से देखें तो ये जो पवने कहाँ से आ रही है, पवने हिंद महासागर से उठने वाली हैं, वो आगे जाके दो शाखाओं में बट गई हैं।
जी जी।
हाँ, तो वही पवने हैं। देखा जाए तो अगर मान लीजिए बीच में अगर भारत की जो स्थिति इस प्रकार की ना होती तो हो सकता है कि ये शाखा दो भागों में ना बटती, एक ही शाखा रहती। लेकिन क्योंकि भारत की स्थिति ने इसको दो भागों में बटने के लिए मजबूर कर दिया है, इसीलिए है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यानी कि मुख्यतः जो वर्षा तो वो बंगाल की खाड़ी से हो रही है, लेकिन सर्वाधिक जो वर्षा जो अरब की सागर की शाखा से हो रही है वो पश्चिमी घाट पर होती है, ना कि यहाँ पर। लेकिन अंत में हम देखें दोनों का जो सोर्स है, जो दोनों का स्रोत है, वो मुख्य एक ही स्रोत है, वो हमारा हिंद महासागर है।
डॉक्टर आनंद, ये तो बात हुई मानसून की। अभी आरंभ में आपने कहा था कि हमारे मौसम और जलवायु में अंतर है, हम मौसम के अनुसार हम अपने ऋतुओं को बांटें तो हम अपनी भारतवर्ष की ऋतुओं को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं?
देखो जहां तक तरुण ऋतुओं की बात है तो वैसे तो मुख्यतः हम कह सकते हैं कि हमारे में भारत में बहुत ऋतु हैं, लेकिन प्रमुख रूप से चार ऋतु हमारे पास भारत में मिलती हैं। एक तो हमारी जो शीत ऋतु है जिसे हम विंटर सीजन बोलते हैं, जिसमें हमारा दिसंबर से फरवरी के बीच का समय आता है
जी।
दूसरी हमारी ग्रीष्म ऋतु अर्थात हमारा यानी कि समर सीजन, जो कि हमारा आता है मार्च से लेके मई तक। तीसरी है हमारा यानी कि आगे बढ़ता हुआ दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिसको हम वर्षा काल भी बोलते हैं, मानसूनी सीजन भी बोलते हैं, और यह जो है ये चार महीने का होता है, जून से लेके सितंबर तक का। और चौथी जो मुख्य हमारी जो बेसिकली ऋतु है, ये इसे हम बोलते हैं पीछे हटता मानसून। अगर इसको हम यानी कि टेक्निकली रूप से इसको बोले तो पीछे हटता मानसून बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, जो कि अक्टूबर से नवंबर तक है। यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्ष के जो 12 महीने हैं उनको हमने इस प्रकार से चार ऋतुओं में अलग अलग हमने बांट दिया है, तो ये चार ऋतु हमारी मिलती हैं। लेकिन अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में चार नौ के छह ऋतु हम बता देते हैं, उसमें दो ऋतु हम इसमें और जोड़ लेते हैं, जिसमें कि हमारा एक तो यानी कि बसंत और एक हमारा इसमें पतझड़ को भी शामिल हम कर सकते हैं। लेकिन मुख्यतः हमारे पास भारत में जो ऋतु हैं वे चार ये ऋतु हैं।
आपने सबसे पहले जिक्र किया शीत ऋतु का, शीत ऋतु की विशेषताएं क्या हैं?
जो शीत ऋतु है ऋतु जी, इसकी बहुत अधिक विशेषताएं, जैसे कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएं तो धीरे धीरे तापमान कम होता चला जाता है। उत्तर भारत में जो औसत रूप से तापमान देखने को मिलता है वो 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच देखने को मिलता है, जबकि दक्षिण भारत में तापमान हमारा 25 डिग्री के आसपास होता है। उसके अलावा उत्तरी पश्चिमी भारत में कई बार पाला भी अधिक पड़ता है, और प्लस उत्तरी पश्चिमी भारत में आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे यानी कि सर्दियों में हमारे यहाँ कुछ वर्षा होती है
जी।
तो वर्षा वो होती है हमारे यानी कि पश्चिमी विक्षोभों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसी से
जी,
तो
जी।
इसी ऋतुकाल के अंदर ही वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसी जाते हैं जो भारत में वर्षा करते हैं जो कि उस वक्त हमारे यहाँ क्योंकि भारत के उत्तरी मैदानों में बुआई हो चुकी होती है क्षेत्र बुआ होता है गेहूं खेती के लिए बहुत अच्छी माना जाता है क्योंकि वो थोड़ी बहुत वर्षा मिलती है और वो गेहूं खेती के लिए अच्छी मानी जाती है और विशेष रूप से इसी ऋतु में हिमालय में हम कह सकते हैं कि हिमपात भी होता है। ये तो हमारी बात हुई उत्तर भारत की। जहां तक दक्षिण भारत की हम बात करें तो दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र पर कोरोमंडल तट पर कुछ वर्षा होती है
जी।
वो भी यानी कि इसी काल में देखने को मिलती है इसी ऋतु में देखने को मिलती है और यह जो ऋतु है ये रबी की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है।
ये तो बात हुई शीत ऋतु की। अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु की क्या विशेषताएं हैं?
जो ग्रीष्म ऋतु है देखिए तरुण जी ग्रीष्म ऋतु बेसिकली क्या है कि इसके अंदर हमारा टेम्परेचर सर्वाधिक होता है
जी।
पूरे विश्व में जो सर्वाधिक टेम्परेचर वो इसी ऋतु काल के अंदर होता है जो कि अक्सर हम देखने को मिलता है कि मई के आसपास टेम्परेचर देखने को मिलता है और इस टेम्परेचर में भी अंतर होता है। दक्षिण भारत का अधिक टेम्परेचर अलग होगा उत्तर भारत का अधिक होगा लेकिन उत्तरी पश्चिमी भारत में विशेष रूप से राजस्थान के पास जैसलमेर में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया जाता है जो कि हमेशा हम कह सकते हैं कि 45 डिग्री से ऊपर होता है जहां का जो तापमान है। दूसरा इसी ऋतु काल के अंदर हम देखें कुछ शुष्क पवने भी हमें मिलती हैं और जो ये जो शुष्क पवने चलती हैं उत्तर भारत में उनको हम लू बोलते हैं
जी।
और जो कि जो कभी कभार यानी कि मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध भी हो जाती हैं और इसी मौसम काल में दोपहर बाद धूल भरी तेज आंधियां चलती हैं कभी कभी गरज के साथ मूसलाधार बारिश भी होती है और ओलावृष्टि भी होती है
जी।
जो कि अब ये तेज धूल भरी जो आंधियां हैं अब इन्हीं को जब ये पश्चिम बंगाल में जब चलती हैं तो उनको काल बैसाखी कहते हैं इनको वहां पर। अब यह जो समय होता है जो ग्रीष्म की आप बात कर रहे हैं ये मानसून से पहले का समय है प्री मानसून पीरियड है
जी।
तो नेचुरली इसमें यानी कि तो कुछ ऐसा भी समय देखा गया है जब थोड़ी बहुत वर्षा इसमें हो जाती है जिसको प्री मानसून हम
कहते हैं।
लेकिन इसी समय जब थोड़ी बहुत वर्षा होती है केरल राज्य में तो उसे हम आरामवृष्टि बोलते हैं
जी जी।
आरामवृष्टि जिसे हम कह सकते हैं यानी कि मैंगो सरोवर
जी।
क्योंकि केरल के जो तटीय क्षेत्रों पर आम के जो पेड़ हैं उनको पकने में ये बहुत बड़ी मददगार साबित होती है तो इसीलिए इसको वहां पे आरामवृष्टि कहते हैं और ये मैंगो सरोवर कहते हैं उसके लिए बड़ी लाभदायक होती है।
हमारी जो भारत की जलवायु है उसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून काफी प्रभावित करता है तो हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून की, इसके विषय में कुछ बताएं।
दक्षिणी पश्चिमी मानसून तरुण जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली वही है जो हिंद महासागर से जो पवने उठती हैं वो उठती हुई पवन अपने साथ आर्द्रता ले लेती हैं और भारत की मुख्य भूमि में या भारत के द्वीपों पर प्रवेश करती हैं
जी।
तो इनके रास्ते में जो क्षेत्र पड़ता है कुछ तो वर्षा वो वहां कर देती हैं लेकिन ये सर्वाधिक वर्षा वहां करती है जब कोई पहाड़ या पर्वत क्षेत्र इनको सामने ठीक खड़ा हो जाए अवरोध के रूप में और वो वर्षा करने के लिए मजबूर करें तब ये वर्षा करती है। लेकिन ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून एक ऐसा मानसून है जब हमारे पास हम कह सकते हैं 70-80% वर्षा इन्हीं 4 महीनों में हमारे पास होती है और ये वही वर्षा है जिस पे हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से भारत की अर्थव्यवस्था इसी पर निर्भर है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत का मानसून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जुए का काम करता है
जी जी।
हाँ क्योंकि हमारी जो आज भी जो कृषि है उस कृषि का बहुत बड़ा क्षेत्र आज भी ऐसा है जो कि हमारा अभी हम कह सकते हैं कि वर्षा पर निर्भर है। अभी हम संपूर्ण
यानी यह है कहना गलत नहीं होगा कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था हमारी कृषि पर ही आधारित है।
उसी पर आधारित है
जी।
क्योंकि जब हम फसल बोते हैं तो हमें सबसे कोई भी हर फसल के लिए हमें पानी की मात्रा अलग अलग चाहिए
जी।
कुछ ऐसी फसलें जो कि बहुत शीघ्र और बहुत अधिक मात्रा में पानी की उनको मांग होती है
जी।
तो जब वो पानी नहीं मिल पाता तो हमें नीचे से सिंचाई के साधनों से पानी देना पड़ता है।
बिल्कुल सर।
तो यानी कि करीब हमारे पास आज के तौर पे हम देखें लगभग एक क्या क्षेत्र ऐसा है जो कि हम केवल सिंचाई क्षेत्र योग्य है जो सिंचाई के लिए पानी दे सकते हैं जिस क्षेत्र को
जी।
वरना 2/3 पे आज भी हम प्रकृति के ऊपर ही निर्भर हैं। तो जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है इसकी अगर हम विशेषताओं को हम देखें तो सर्वाधिक जो वर्षा हमारी होती है या तो पश्चिमी घाट पर होती है इससे या होती है उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय के पठार के आस उस क्षेत्र पे। और जब हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान की तरफ तो इसकी वर्षा घटती चली जाती है धीरे धीरे वर्षा की मात्रा कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार हम ये भी देखते हैं कि सहसंबंध पाया जाता है जनसंख्या और वर्षा के बीच में क्योंकि जो जनसंख्या घनत्व है वो पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान की तरफ जैसे यानी घट रहा है ठीक वर्षा की मात्रा भी वैसी घटती चली जा रही
है। पॉजिटिव
कोरिलेशन दोनों में हम कह सकते हैं पॉजिटिव कोरिलेशनशिप है सहसंबंध पाया जाता है।
अगर हम बात करें अक्टूबर नवंबर महीना में, तो अक्टूबर नवंबर में भारत के पूर्वी तट पर क्या हमें परिवर्तन देखने को मिलता है?
अक्टूबर और नवंबर का जो समय है, यह जो वो समय है जो कि हम कहते हैं कि पीछे हटता मानसून है
जी,
रिट्रीटिंग मानसून जिसको हम बोलते हैं। इस समय काल में क्या होता है कि जब मानसून जो होता है वो अपने मानसून पवने अपनी नमी को गिरा चुकी होती हैं
जी बिल्कुल,
और धीरे धीरे अब हमारा जो यानी कि लो प्रेशर जो पहले हमारा उत्तरी पूर्वी भारत में बना होता अब वहां से हटकर वो स्थानांतरित वो यानी कि ट्रांसफर हो जाता है उसका, हम कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में, यानी कि उत्तर पूर्वी से हटकर भारत जो यानी कि हमारा लो प्रेशर था उसका स्थानांतरण हो गया हम बंगाल की खाड़ी में, तो पवने वहां से अब अपना यानी कि रुख को मोड़ लेती हैं, वहां से अपनी दिशाओं को मोड़ लेती हैं और वो चलती हैं अब अपने बंगाल की खाड़ी की तरफ
जी।
जब वो बंगाल की खाड़ी की तरफ चलती हैं तो फिर रास्ते में से पुनः वो क्योंकि वो खाली हो चुकी होती है नमी डाल चुकी होती है तो आते वक्त दोबारा कुछ उनमें से पवने अपने साथ आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं बंगाल की खाड़ी से और उनको वो कोरोमंडल तट पे या तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पर उनको वहां पे डाल देती हैं, वहां पर उनको वर्षा वो कर देती हैं। और इसी मौसम काल में फिर ये भी देखने को मिलता है क्योंकि हमारे पूर्वी घाट पे कुछ हमारी जो मुख्य नदी है जिसमें महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इन पे कुछ चक्रवातीय प्रभाव देखने को मिलते हैं इस समय, और वो चक्रीय जो चक्रवातीय प्रभाव है वो इसी मौसम काल में आते हैं। तो ये तो एक तो हमारा ये हुआ कि अक्टूबर नवंबर में एक तो चक्रवात उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे कि बहुत बड़े स्तर पर जन और मान की हमारे पे हानि होती है। दूसरा हमारा ये है कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पे कुछ वर्षा मिलती है जो कि कहीं नहीं मिलती, अगर हम कहें यानी कि शीतकाल में अगर कहीं वर्षा है तो वो केवल यहीं मिलती है और कहीं पूरे भारत में नहीं देखने को
नहीं मिलती। अभी अभी आपने हमें और हमारे शिक्षार्थियों को बताया मौसम के बारे में यानी ऋतुओं के चक्र के बारे में। अब मैं जानना चाहूंगी कि हमारी जो भारत की वर्षा है किसी क्षेत्र में बहुत अधिक है तो किसी क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम है, तो हम वितरण की बात करते हैं, तो भारत में वर्षा का वितरण किस प्रकार का है?
बिल्कुल सही आप पूछ रहे हैं इसमें तरुण जी। वर्षा की अगर वितरण की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर जो वर्षा का जो वितरण है वो असमान है, कहीं भी ऐसा नहीं कि एक समान वर्षा हो रही हो
जी, बिल्कुल।
तो और उसके यानी कि वितरण के आधार पर ही पूरे भारत को हम पांच भागों में बांट सकते हैं, लेकिन अगर मुख्यतः हम बात करें तो चार पार्ट हमारे बनते हैं, चार भाग बनते हैं
जी।
जिसमें पहले है हमारा उच्च वर्षा के क्षेत्र, यानी कि वो क्षेत्र जहां पर कि हमारी वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है। इसमें एक आता है हमारा पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी भारत, ये क्षेत्र जहां पर की वर्षा 200 सेंटीमीटर से
अधिक होती है।
दूसरा है हमारा इसके अंदर सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र जहां पर की वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच
होती है,
और इसमें विशेष रूप से जो राज्य हमारे आते हैं वो पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार इत्यादि हैं। तीसरा है हमारा वो क्षेत्र जहां की वर्षा कम होती है, कम वर्षा के क्षेत्र जहां की 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, और इसमें हमारा आता है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और गुजरात का कुछ हिस्सा इसमें आता है। चौथा जो हमारा इसमें यानी कि हमारा वितरण का जो पार्ट बढ़ता है वो बढ़ता है हमारा अपर्याप्त वर्षा, यानी कि बिल्कुल हम कह सकते हैं स्केंटी ऑफ द रेनफॉल, जहां पर की वर्षा की मात्रा 60 सेंटीमीटर से कम है। अब इसमें आई तो पश्चिमी पार्ट आता है, इसमें द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान, राजस्थान का पश्चिमी भाग आता है, गुजरात आता है, लद्दाख आता है, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर की वर्षा हमारी मात्र 60 सेंटीमीटर से बहुत कम है, और विशेष रूप से लद्दाख और राजस्थान के पश्चिम भाग तो वर्षा बहुत ही कम होती है
जी जी।
तो अगर वितरण की बात करें भारत में इतनी अधिक वितरण है कि एक तरफ तो कहां चेरापूंजी और हमारे पास मौसिनराम है जहां वर्षा हम कह सकते हैं कि 1050 सेंटीमीटर से भी अधिक हो रही है, और ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां वर्षा हमारे पास 50 सेंटीमीटर भी नहीं है, यानी कि 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक भारत के अंदर इसका अंतर देखने को मिलता है।
बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे हम देख रहे हैं चेरापूंजी और मौसिनराम जिसमें जो हमारी वर्षा है वो विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है, लेकिन एक तरफ हम अपने भारत के राजस्थान राज्य को ही लें तो राजस्थान में जो थार मरुस्थल है उसमें हमारी बारिश सबसे कम होती है। ऐसा क्या कारण है कि एक ही देश में दो स्थान है और दोनों में ही वर्षा में इतना अंतर है?
बिल्कुल सही आपने बहुत बढ़िया बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। देखिए दोनों के अंदर जो कारण है वो ये है कि हमारा यानी कि जो हमारे हिंद महासागर से जो उठने वाली पवने हैं जब वो नमी युक्त होती हैं और जब वो उत्तर पूर्वी भारत में जाती हैं तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि तीन मुख्य रूप से वहां पर पहाड़ियां हैं, गारो खासी की पहाड़ियां और जयंती की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों में वो पवने फंस जाती हैं और फंस के वहाँ वर्षा करने के लिए मजबूर हो जाती हैं, जिससे बहुत बड़ी भारी वो वर्षा करती हैं और सर्वाधिक वर्षा विश्व की वहाँ होती है। जबकि वो पवने जब पची कुछ पवने जब आगे बढ़ती हैं तो वो पवने धीरे धीरे राजस्थान में पहुंचती हैं, और राजस्थान में जब पहुंचती हैं तो इनको पहाड़ी मिलती है अरावली पहाड़ी, वो अरावली पहाड़ी उनको नहीं रोक पाती क्योंकि उन पवनों के समानांतर उसकी स्थिति है, तो वहां पर वर्षा नहीं हो पाती तो वहां सूखा पड़ता है। तो यही कारण है कि दोनों क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में वितरण देखने को मिलता है।
जो यानी आप कहना चाहते हैं कि ज्योग्राफिकल सिचुएशन
बिल्कुल, जो हम कहते हैं कि इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो यही विविधता है, इतनी अधिक विविधता भारत में देखने को मिलती है।
जी, आज जैसे हम लोग जिक्र कर रहे हैं मौसम और जलवायु का, मौसम और जलवायु वे भारतीय संस्कृति यानी सांस्कृतिक जीवन में कोई संबंध है?
बिल्कुल, दोनों के अंदर बिल्कुल मैं कह सकता हूँ अत्यंत महत्वपूर्ण और सह संबंध है।
कैसे?
क्योंकि जो मौसम है कहीं ना कहीं हमारी हर रोजमर्रा की जो जिंदगी है, दैनिक जीवन की जो गतिविधियां, उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है। क्योंकि जैसे हम देखें कि भारत के अंदर जो हमारा कृषि प्रधान देश है, वो कृषि हमारी मौसम पर आधारित है। उसके अलावा हम अपने जीवन में थोड़ा यानी कि आनंद लाने के लिए हम समय समय पर कुछ हमने त्योहारों को हमने मनाते हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि सर्दी के मौसम में हम अपने कुछ त्योहार मनाते हैं, जो कि हमारा उड़ीसा में भी है, वो उसमें हमारा तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, मकर संक्रांति को मनाया जाता है। बसंत के मौसम में आके हम बसंत पंचमी को मना लेते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा मार्च के महीने में हम होली के जो त्योहार है उसका हम सेलिब्रेट करते हैं। फिर जब आगे हम मानसून का समय आता है तो हमारे यहाँ तीज का त्योहार आ जाता है।
डॉक्टर आनंद, तो आपके कहने का अभिप्राय यह है कि जो हमारे त्योहार हैं वो किसी न किसी तरह से हमारी जो मौसम है उसको रिलेट करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल
जी। अब हम बात करते हैं वैश्विक तापमान की यानी ग्लोबल वार्मिंग की। अक्सर हम सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में सुनते हैं, रेडियो पर भी सुनते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या?
जो ग्लोबल वार्मिंग है ये है कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें वृद्धि हो जाना, और पृथ्वी के औसत तापमान में पिछले 100 वर्षों में बहुत अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। और यह जो वृद्धि दर्ज हो गई है यह करीब यानी कि 0.4 से 0.7 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जिसके अनेक कारण रहे हैं। तो पृथ्वी का हम कह सकते हैं कि औसत रूप से गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है, जिसके अनेक कारण है। जैसे ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ता चला जा रहा है, निर्वनीकरण हो रहा है, जिसको हम डिफोरेस्टेशन बोलते हैं, कि वनों को काटा जा रहा है या वन कम हो रहे हैं। उसके अलावा तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और उनके द्वारा संसाधनों का जो दुरुपयोग हो रहा है
जी।
और इसके अलावा जो एक मुख्य कारण यह भी है कि अक्षीय यानी सूर्य से आने वाली जो प्राबैंगनी किरणें जो अल्ट्रा वायलेट सीधी धरातल पे आ रही है, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ा रही है
जी। अभी अभी आपने बात की वैश्विक तापमान की, इस वैश्विक तापमान का हमारे भारतीय जलवायु पर क्या प्रभाव है?
जहां तक जलवायु पे प्रभाव की बात तरुण जी, तो हम इसमें देखते हैं कि जलवायु प्रत्यक्ष प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो ये कि आज हमारे तापमान में करीब 0.4 से 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसे में यहाँ पे हजार्ड्स और डिजास्टर का हमें सामना करना पड़ रहा है। गर्मी का और सर्दी के मौसम और उसके विस्तार में अंतर परिवर्तन देखने को मिल गया। और सबसे बड़ा जो अंतर और जो स्पष्ट जो हमारे सामने जो परिणाम है वो ये है कि ग्लेशियर और हिमालयों का पिघलना, धीरे धीरे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे कि यानी कि हम कह सकते हैं कि नदियों में बाढ़ आ रही है। अंत में यह पानी धीरे धीरे जाके सागर महासागरों में इकट्ठा हो रहा है, जिससे कि जल स्तर बढ़ गए हैं और धीरे धीरे जो हमारे यानी जो द्वीप हैं वो जलमग्न होने के कगार पर पहुंच गए हैं।
तो प्रिय शिक्षार्थियों, आज हमने जाना जलवायु के बारे में, यानी हमारी भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और ऐसे कौन से कारक हैं जो हमारी जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। नमस्कार शिक्षार्थियों।